एकत्रा फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथ सार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का साल अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ग्रंथ सार में आपका स्वागत है। आज हम अमरीकी साहित्य के एक ऐसे लेखक की दुनिया में गहरे उतर रहे हैं जिन्होंने कहानी कहने के पारंपरिक तरीकों को, आप कह सकते हैं, चुनौती दी। विलियम फॉकनर।
हाँ, विलियम फॉकनर और उनकी शायद सबसे जटिल पर सबसे प्रभावशाली कृतियों में से एक, द साउंड एंड द फ्यूरी।
बिल्कुल, फॉकनर जिन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला, उनकी कहानियों में अमरीकी दक्षिण की आत्मा बसती है, है ना? उन्हें अक्सर दक्षिणी गॉथिक परंपरा का लेखक कहा जाता है।
हाँ, और ये दक्षिणी गॉथिक अपने आप में दिलचस्प चीज है, मतलब ये सिर्फ भौतिक कहानियां नहीं है।
नहीं, बिल्कुल नहीं, ये शैली असल में अमरीकी दक्षिण के उस पतनशील माहौल, वहाँ के पुराने रीति रिवाजों पर एक तरह की तीखी टिप्पणी करती है।
हाँ, कई बार कुछ अजीब, कुछ विचलित करने वाली घटनाओं का इस्तेमाल होता है ताकि गहरे मनोवैज्ञानिक और सामाजिक सच सामने आ सकें।
हाँ, और फॉकनर इसमें माहिर थे। उनकी वो काल्पनिक योकना पटाफा काउंट्री, वो तो जैसे पूरे दक्षिणी समाज का एक छोटा सा नक्शा बन जाती है।
बिल्कुल, और उनकी लिखने की शैली भी उतनी ही अलग थी। वो चेतना प्रवाह, जिसे स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस कहते हैं,
जहाँ हम किरदारों के मन में जैसे सीधे झांक लेते हैं, उनके विचार बिना किसी क्रम के बहते रहते हैं।
हाँ, और कहानी का समय, कभी आगे कभी पीछे, और कई बार कथावाचक ऐसे होते हैं कि आप पूरी तरह भरोसा नहीं कर सकते कि वो सच बता रहे हैं या नहीं।
ये सब मिलकर मानवीय मन की उलझने, इतिहास का बोझ जो कभी पीछा नहीं छोड़ता, और नस्ल वर्ग, इन सब के तनावों का एक बहुत गहरा, बहुत सजीव चित्र बनाते हैं।
और द साउंड एंड द फ्यूरी जो 1929 में आई, वो इन सभी तकनीकों का जैसे शिखर है। इसे मॉडर्निज्म, आधुनिकतावादी साहित्य का एक मील का पत्थर माना जाता है।
लेकिन जब ये छपी थी, तब पाठकों के लिए इसे समझना काफी मुश्किल रहा होगा, है ना?
अरे बिल्कुल, इसकी वो टूटी फूटी सी संरचना, अलग अलग लोगों का नजरिया, समय का वो उलझा हुआ जाल, पाठकों के लिए तो एक पहेली ही थी।
पर आज हम इसे क्रांतिकारी रचना मानते हैं।
हाँ, और इसका शीर्षक भी बहुत कुछ कहता है, शेक्सपियर के मैकबेथ से लिया गया है।
हाँ, वो प्रसिद्ध पंक्ति, जीवन एक कहानी है जिसे एक मूर्ख ने कहा है, शोर और उन्माद से भरी, जिसका कोई अर्थ नहीं।
बिल्कुल, अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी सिग्निफाइंग नथिंग। ये शीर्षक उपन्यास में जो उथल पुथल है, जो एक निरर्थकता की भावना है, और फिर भी इंसान की छटपटाहट कि कोई मतलब ढूंढा जाए, उसको पकड़ लेता है।
तो कहानी हमें ले जाती है मिसिसिपी के जेफरसन शहर, कॉम्पसन परिवार के घर।
हाँ, ये कॉम्पसन परिवार कभी वहां का एक नामी प्रतिष्ठित परिवार हुआ करता था, पर अब वो गहरे पतन और बिखराव का शिकार है।
तो एक तरह से ये सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं है।
नहीं, बिल्कुल नहीं, ये पुराने दक्षिणी अभिजात्य समाज के जो मूल्य थे, जो अब ढह रहे थे, उसका भी प्रतीक है। कहानी का जो मुख्य हिस्सा है, वो तो 1928 के ईस्टर वीकेंड में होता है।
लेकिन यादों के जरिए हम बार बार पीछे जाते हैं 20वीं सदी की शुरुआत के दिनों में।
हाँ, वो फ्लैशबैक बहुत हैं, तो आज हम कोशिश करेंगे कि इस जटिल उपन्यास की परतें खोलें। कहानी कैसे आगे बढ़ती है, किरदारों के मन में क्या चल रहा है, उनके एहसासों का सफर,
और फॉकनर की वो अनोखी शैली, उस पर भी गौर करेंगे जिसने इसे इतना यादगार बनाया।
बिल्कुल, तो शुरू कहाँ से करें, कॉम्पसन परिवार से?
हाँ, वहीं से शुरू करते हैं। कौन है इस परिवार के मुख्य लोग?
देखिए, परिवार की धुरी तो है माता पिता और उनके चार बच्चे। माँ है कैरोलिन बास्कॉम कॉम्पसन, वो हमेशा मतलब अपनी बीमारियों और अपनी किस्मत करोना रोती रहती हैं, आत्मदया में डूबी हुई।
अच्छा, और पिता?
पिता जेसन सीनियर, उनकी मृत्यु हो चुकी है कहानी शुरू होने से पहले। वो पढ़े लिखे थे लेकिन काफी निंदक, सिनिकल किस्म के, और शराबी भी। उनके विचारों का असर उनके बच्चों पर साफ दिखता है।
और बच्चे, वो तो कहानी के बिल्कुल केंद्र में है।
हाँ, चार बच्चे हैं। सबसे बड़ा बेटा क्विंटन, वो हार्वर्ड में पढ़ता है, बहुत समझदार, संवेदनशील, लेकिन वो दक्षिणी इज्जत और अतीत के बोझ तले जैसे दबा हुआ है। फिर है कैडी, इकलौती बेटी, उसके बारे में हम अभी और बात करेंगे। तीसरा है जेसन चतुर्थ, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है लेकिन साथ ही बेहद क्रूर, लालची और कड़वाहट से भरा हुआ।
अच्छा, और चौथा?
और सबसे छोटा है बेंजी, बेंजामिन, वो 33 साल का है पर गंभीर मानसिक अक्षमता है उसे, उसकी समझ एक छोटे बच्चे जैसी ही है।
और उनका घर, उसका भी जिक्र आता है?
हाँ, उनका वो पुराना जर्जर होता घर, वो भी जैसे परिवार के नैतिक और आध्यात्मिक खोखलेपन का एक प्रतीक बन गया है।
आपने कैडी का जिक्र किया।
हाँ।
और ये बात मुझे हमेशा बहुत दिलचस्प लगती है कि उपन्यास के चार खंड हैं, पर किसी ने भी कैडी खुद अपनी कहानी नहीं कहती। उसका अपना नजरिया हमें मिलता ही नहीं।
सही कहा।
फिर भी लगता है जैसे पूरी कहानी उसी के आसपास घूम रही है। उसे उपन्यास का अनुपस्थित केंद्र कहते हैं। ऐसा क्यों है?
यही तो फॉकनर की कला है। कैडी भले ही खुद कुछ नहीं बोल रही, लेकिन उसके जीवन में जो हुआ, उसकी किशोरावस्था में मासूमियत का जाना, उसकी बढ़ती यौनिकता, समाज के नियमों को तोड़ना, फिर शादी से पहले गर्भवती होना, एक नाकाम शादी और आखिर में परिवार से निकाला जाना,
ये सारी घटनाएं,
हाँ, यही सब उसके तीनों भाइयों के जीवन और उनकी मानसिक स्थिति पर गहरा असर डालती हैं। वो एक चुंबक जैसी है जिसके चारों ओर उनके जीवन की ट्रेजेडी घूमती है।
तो हर भाई के लिए कैडी का मतलब कुछ अलग था।
बिल्कुल। सबसे छोटे भाई बेंजी के लिए कैडी का मतलब था सुरक्षा, एक तरह का ऑर्डर और बिना शर्त वाला प्यार। वो उसे पेड़ों जैसी महक से पहचानता था। जब कैडी उससे दूर हो जाती है, बेंजी की पूरी दुनिया ही बिखर जाती है।
और बड़े भाई क्वेंटिन के लिए?
क्वेंटिन के लिए कैडी पारिवारिक सम्मान, इज्जत और दक्षिणी औरत की पवित्रता का प्रतीक थी। कैडी की यौन स्वतंत्रता क्वेंटिन बर्दाश्त नहीं कर पाया और ये उसके पतन का एक मुख्य कारण बना।
और तीसरा भाई जेसन?
और मंझला भाई जेसन, उसके लिए कैडी उसकी अपनी फ्रस्ट्रेशन, अपनी नाकामियां और दुनिया के प्रति उसकी नफरत का निशाना बन गई। वो उसे कभी माफ नहीं कर पाया। तो हाँ, एक ही कैडी पर हर भाई के मन में उसकी छवि, उसका असर बिल्कुल अलग।
ये कमाल है कि कैसे एक किरदार बिना बोले इतना असरदार हो सकता है। अब जरा उपन्यास की बनावट पर आते हैं। उसकी संरचना, जो अपने आप में क्रांतिकारी मानी जाती है, चार हिस्से, अलग अलग दिन, अलग अलग नजरिया।
हाँ, ये संरचना पाठक को कोई सीधी साधी कहानी नहीं देती। पहला खंड बेंजी के नजरिए से है, दूसरा क्वेंटिन के, तीसरा जेसन के,
और चौथा
एक बाहरी सर्वज्ञ कथावाचक के नजरिए से है, जिसका फोकस ज्यादातर डिल्सी पर रहता है। और कहानी सीधी रेखा में नहीं चलती। यादें, वर्तमान की घटनाएं, सब आपस में उलझी हुई हैं। पाठक को खुद इन टुकड़ों को जोड़कर पूरी तस्वीर बनानी पड़ती है।
तो ये पाठक से काफी मेहनत करवाती है। आप बस बैठकर सुन नहीं सकते, आपको कहानी के साथ जूझना पड़ता है।
बिल्कुल। और ये शायद पाठक को कॉम्पशन परिवार के बिखराव और उस भ्रम को महसूस कराने का एक तरीका भी है। जैसे परिवार टूटा हुआ है, वैसी कहानी भी टूटी हुई सी लगती है।
चलिए पहले खंड में चलते हैं। 7 अप्रैल 1928, गुड फ्राइडे से एक दिन पहले का दिन। ये बेंजी का दिन है। उसकी दुनिया कैसी है?
बेंजी की दुनिया तर्क या भाषा की दुनिया नहीं है, वो संवेदनाओं की दुनिया है। जैसा मैंने कहा, वो 33 साल का है, पर उसकी मानसिक उम्र बहुत कम है। वो समय को नहीं समझ पाता। अतीत और वर्तमान उसके लिए जैसे एक ही पल में मौजूद होते हैं।
अच्छा, मतलब कैसे?
उसकी यादें किसी गंध से, किसी आवाज से, किसी दृश्य से अचानक कौंध जाती हैं। जैसे गोल्फ कोर्स पर कोई चिल्लाता है कैडी, तो उसे फौरन अपनी बहन कैडी याद आ जाती है।
तो उसकी चेतना एक तरह से लगातार दहती रहती है, बिना किसी लॉजिकल तरतीब के।
हाँ, बिल्कुल। और इसी बिखरे हुए बहाव से हमें परिवार की दुखद घटनाओं की झलकियां मिलती हैं। दादी डैमोडी की मौत का दिन, जब छोटी कैडी पेड़ पर चढ़ी थी और उसकी पैंट कीचड़ में सन गई थी।
हाँ, वो एक महत्वपूर्ण प्रतीक है।
हाँ, जैसे ये उसकी मासूमियत खोने का पहला संकेत हो। फिर कैंडी का वो बिना शर्त वाला प्यार, फिर उसका परफ्यूम लगाना शुरू करना, उसकी शादी का दिन जिसे बेंजी किसी मौत की तरह महसूस करता है, और अंत में उसके बदियाकरण, उसके कैस्ट्रेशन का भी इशारा मिलता है। ये सब सीधे नहीं कहा जाता है, लेकिन बेंजी की संवेदनाओं और उसकी प्रतिक्रियाओं से हम उस गहरे दर्द और नुकसान को महसूस करते हैं।
बेंजी की संवेदनात्मक लगभग भाषा से पहले की दुनिया से निकलकर दूसरा खंड हमें समय में काफी पीछे ले जाता है। 2 जून 1910, ये क्विंटन कॉम्पसन का नजरिया है और ये उसके जीवन का आखिरी दिन है। क्विंटन कैसा है?
क्विंटन बेंजी से बिल्कुल अलग है। वो हार्वर्ड का छात्र है, बहुत पढ़ा लिखा, संवेदनशील, दार्शनिक किस्म का, लेकिन वो गहरे मानसिक तनाव से गुजर रहा है। उसका खंड भी चेतना प्रवाह शैली में है, पर यहाँ विचारों, यादों और फिलोसॉफिकल सोच का प्रवाह है।
वो किस चीज से इतना परेशान है?
उस समय के बीतने के विचार से, दक्षिणी सम्मान के खोखले होते जा रहे आदर्शों से, और सबसे ज्यादा अपनी बहन कैडी की पवित्रता खोने के विचार से बुरी तरह ग्रस्त है।
उसके जीवन के इस आखिरी दिन में क्या खास होता है? क्या चीजें उसे बिल्कुल किनारे पर ले आती हैं?
उसका पूरा दिन ही जैसे एक मानसिक उथल पुथल का नक्शा है। वो अपने पिता की दी हुई पुश्तैनी घड़ी तोड़ देता है, जैसे वो समय को ही रोक देना चाहता हो। वो कैडी के प्रेमी डाल्टन एम्स के साथ अपनी उस बेइज्जती भरी मुलाकात को याद करता है। वो अपने पिता के सामने कैडी के साथ व्यभिचार करने का झूठा दावा तक करता है, शायद किसी अजीब तरीके से कैडी और अपनी किस्मत को हमेशा के लिए जोड़ने की कोशिश में।
लेकिन पिता का क्या रिएक्शन होता है?
पिता का वो निंदक सिनिकल जवाब उसे और तोड़ देता है।
वो फिर आत्महत्या की तैयारी करता है,
दो लोहे की स्त्री खरीदता है ताकि नदी में आसानी से डूब सके।
इस खंड में प्रतीक भी बहुत इस्तेमाल हुए, जैसे पानी, परछाइयाँ।
हाँ, पानी यहाँ शुद्धता और मृत्यु दोनों का प्रतीक बनकर आता है। परछाइयाँ वो जैसे उसके अतीत से पीछा न छुड़ा पाने और उसकी अपनी पहचान के संकट को दिखाती हैं। ये सब मिलकर क्वेंटिन की टूटी हुई मानसिकता और असलियत से भागने की उसकी कोशिश को दिखाते हैं।
और अंत में?
अंत में वो हार्वर्ड के पास चार्ल्स नदी में कूद कर अपनी जान दे देता है। उसका वो आदर्शवाद और समय को लेकर उसका जुनून उसे खत्म कर देता है।
क्वेंटिन की इस बौद्धिक और भावनात्मक पीड़ा के बाद तीसरा खंड हमें फिर 1928 में वापस लाता है, 6 अप्रैल गुड फ्राइडे के दिन, और अब कथावाचक है जेसन चतुर्थ।
ये अपने भाइयों से कितना अलग है?
अरे, जमीन आसमान का फर्क है। जेसन एकदम यथार्थवादी है, या कहें कि भौतिकवादी। उसमें न बेंजी जैसी मासूमियत है, न क्वेंटिन जैसा आदर्शवाद। वो कड़वा है, गुस्सैल, लालची और बेहद क्रूर।
उसे नए दक्षिण का प्रतिनिधि भी कहा जाता है।
हाँ, कह सकते हैं। वो नया दक्षिण जहाँ पुराने सम्मान और मूल्यों की जगह पैसे और अपने मतलब ने ले ली है। उसका नजरिया एकदम सीधा, सपाट और अक्सर
घृणास्पद होता है।
उसकी ये क्रूरता और ये भौतिकवाद कैसे सामने आते हैं कहानी में?
वो एक हार्डवेयर स्टोर में काम करता है और खुद को परिवार का एकमात्र कमाने वाला सदस्य मानता है, जिसका वो सबको ताना भी मारता रहता है।
अच्छा।
वो अपनी माँ से झूठ बोलकर कैडी द्वारा अपनी बेटी मिस क्विंटन के लिए भेजे गए पैसे चुरा लेता है। वो अपनी भतीजी मिस क्विंटन के प्रति बहुत निर्दयी है, उसके जीवन को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, उसे बेइज्जत करता है। उसका नस्लवादी भी खुलकर सामने आता है। वो बेंजी को भी एक बोझ ही समझता है। जहां क्विंटन एक अमूर्त सम्मान के लिए जान दे देता है, वहीं जेसन छोटी छोटी बातों पर चीखता चिल्लाता है, पैसे के पीछे भागता है। वो परिवार को शायद पैसों से संभाले हुए हैं, पर भावनाओं के स्तर पर उन्हें रोज मारता है।
इन तीन भाइयों के इतने निराशा भरे नजरिए सुनने के बाद चौथा खंड कुछ अलग लेकर आता है। ये 8 अप्रैल 1928 ईस्टर रविवार का दिन है, और कथावाचक अब तीसरे पुरुष में है, जिसका ध्यान मुख्य रूप से डिल्सी गिब्सन पर है। डिल्सी कौन है और क्यों महत्वपूर्ण है?
डिल्सी गिब्सन कॉम्पटन परिवार की अश्वेत रसोईया और नौकरानी है। वो दशकों से उनके साथ है। वो इस बिखरते, नैतिक रूप से खोखले परिवार के बीच स्थिरता, सहनशीलता, विश्वास और गहरी मानवीय करुणा का प्रतीक है। वो उपन्यास का नैतिक केंद्र है।
वो परिवार की सच्ची देखभाल करने वाली है।
हाँ, एक तरह की मातृशक्ति जो कॉम्पटन परिवार के सदस्यों के स्वार्थ और पतन के बिल्कुल विपरीत खड़ी है। उसका एक मशहूर कथन है, I've seen the first and the last, जो उसके लंबे अनुभव और धीरज को दिखाता है।
तो ईस्टर रविवार का ये दिन डिल्सी के नजरिए से कैसा दिखता है? क्या इस दिन कोई उम्मीद की किरण दिखती है?
डिल्सी हमेशा की तरह घर को संभालने की कोशिश कर रही है, श्रीमती कॉम्पटन की शिकायतें सुन रही है, बेंजी की देखभाल कर रही है। एक बहुत महत्वपूर्ण सीन है जब डिल्सी बेंजी को लेकर अपने अश्वेत चर्च जाती है।
हाँ, वो सीन बहुत शक्तिशाली है।
बिल्कुल, वहां ईस्टर का उपदेश चल रहा है जो दुख, सहनशीलता और अंत में मोक्ष की बात करता है। ये कॉम्पटन परिवार की आध्यात्मिक शून्यता के सामने गहरा कॉन्ट्रास्ट खड़ा करता है। ये दिखाता है कि बाहरी मुश्किलों के बावजूद डिल्सी और उसके समुदाय में गहरी आस्था और नैतिक शक्ति है।
और कहानी का अंत किस तरह होता है? क्या कोई समाधान मिलता है, कोई क्लोजर?
जब वे चर्च से लौटते हैं तो पता चलता है कि मिस क्विंटन घर से भाग गई है, और जाते जाते उसने न केवल वो पैसे ले लिए जो जेसन ने कैंडी से चुराए थे, बल्कि जेसन की अपनी जमा पूंजी भी उड़ा ले गई है।
ओहो, जेसन का क्या हाल होता है?
जेसन गुस्से से पागल होकर उसका पीछा करता है, लेकिन नाकाम रहता है। ये जैसे उसकी चुनौती, हार और उसकी नपुंसकता का प्रतीक है। उपन्यास का सबसे आखिरी दृश्य बहुत मार्मिक है। डिल्सी का पोता लस्टर बेंजी को गाड़ी में कब्रिस्तान की तरफ ले जा रहा होता है, जहां वो अक्सर जाते हैं, लेकिन लस्टर रोज वाले रास्ते से अलग मुड़ जाता है। बेंजी, जिसकी दुनिया एक तय क्रम और आदत पर टिकी है, इस बदलाव से बुरी तरह घबरा जाता है और भयानक चीखें मारने रखता है।
ओ, तो उसकी जो स्थापित व्यवस्था थी वो भंग हो जाती है।
हाँ, और जब जेसन आकर गाड़ी को वापस सही परिचित रास्ते पर मोड़ता है, तब जाकर बेंजी शांत होता है। फूलों का एक गमला उसकी गोद में रख दिया जाता है और वो चुपचाप उसे देखता रहता है।
तो एक तरह से व्यवस्था फिर बहाल हो जाती है।
हाँ, एक तरह से एक नाजुक बनावटी व्यवस्था फिर से बहाल हो जाती है। लेकिन ये कोई समाधान नहीं है। ये दिखाता है कि कॉम्पसन परिवार का जीवन अब बस एक आदत, एक बाहरी क्रम पर टिका है, जिसके नीचे गहरा नुकसान, पतन और खालीपन है। अंत में शांति तो है, पर वो हार की शांति ज्यादा लगती है।
इस पूरी कहानी में जो कई दशकों और किरदारों के मन में फैली हुई है, फॉकनर कई गहरे विषयों को छूते हैं। अगर हम कुछ मुख्य विषयों की बात करें तो वो क्या होंगे?
सबसे पहले तो जाहिर है दक्षिणी अभिजात्य वर्ग का पतन और पारंपरिक मूल्यों का खोखलापन, ये कॉम्पसन परिवार के जरिए दिखता है। फिर समय का विषय बहुत महत्वपूर्ण है। समय कैसे यादें बनाता और मिटाता है, कैसे कुछ लोग अतीत में अटके रह जाते हैं, जैसे क्विंटन
कुछ समय को समझ ही नहीं पाते, जिससे बेंजी।
हाँ, और कुछ सिर्फ वर्तमान के फायदे नुकसान में जीते हैं, जैसे जेसन।
व्यवस्था बनाम अराजकता का संघर्ष भी लगातार चलता रहता है ना।
बिल्कुल, बाहरी दुनिया में भी और किरदारों के मन के अंदर भी।
बिल्कुल।
और प्रेम के अलग अलग रूप भी दिखते हैं। बेंजी का वो मासूम बिना शर्त वाला प्रेम, क्विंटन का आदर्शवादी लेकिन विनाशकारी प्रेम, जेसन में प्रेम का पूरी तरह अभाव और डिल्सी का वो धीरज भरा करुणामय स्थायी प्रेम।
इसके अलावा नस्ल और वर्ग भेद की कठोर सच्चाई, खासकर कॉम्पसन परिवार और उनके अश्वेत नौकरों जैसे डिल्सी के बीच के रिश्तों में।
हाँ, वो भी बहुत अहम है। और एक और बात, भाषा और संवाद की विफलता। ऐसा लगता है पात्र अक्सर एक दूसरे को समझ ही नहीं पाते या अपनी भावनाओं को सही शब्दों में कह नहीं पाते।
बिल्कुल। और अंततः स्त्री यौनिकता का मुद्दा, खासकर कैडी के चरित्र के माध्यम से, और समाज कैसे उसे देखता है और दंडित करता है।
हाँ,
ये भी एक महत्वपूर्ण विषय है।
सही कहा।
इन जटिल विषयों को प्रस्तुत करने के लिए फॉकनर ने जिन साहित्यिक तकनीकों का इस्तेमाल किया है, वो भी कमाल की है। हमने चेतना प्रवाह की बात की, जो हमें सीधे बेंजी और क्विंटन के मन में ले जाती है।
हाँ, और कई अलग अलग कथा दृष्टिकोणों का इस्तेमाल। ये हमें एक ही घटना या व्यक्ति को कई नजरियों से देखने का मौका देता है, जिससे सच्चाई की परतें खुलती हैं।
कहानी का समय में आगे पीछे जाना, वो खंडित कालक्रम, पाठक को हमेशा सजग रखता है।
बिल्कुल।
और प्रतीकवाद का भी बहुत सुंदर उपयोग है,
जैसे क्विंटन की वो घड़ी जो समय के बोझ का प्रतीक है। हाँ, और परछाइयां जो अतीत और पहचान की अस्थिरता को दर्शाती हैं। पानी जो शुद्धता और मृत्यु दोनों से जुड़ा हुआ है। पेड़, खासकर कैंडी और पेड़ों की महक का बेंजी के मन में जुड़ाव, वो मासूमियत और प्राकृतिक व्यवस्था का प्रतीक है।
और कैंडी की वो कीचड़ लगी पैंट।
हाँ, जो मासूमियत के खोने का प्रतीक बन जाती है। और हर कथावाचक की अपनी खास भाषा, बेंजी की सरल दोहराव वाली भाषा, क्विंटन की जटिल दार्शनिक शब्दावली, जेसन की रूखी गालियों भरी भाषा, ये सब उनके चरित्र और उनकी दुनिया को रचने में मदद करते हैं।
इस उपन्यास को पढ़ना वाकई एक भावनात्मक सफर है। शुरू में बेंजी के खंड से थोड़ी उलझन और बेचैनी होती है।
हाँ, होती है।
क्विंटन के साथ दुख और निराशा में डूबते हैं। जेसन को पढ़कर गुस्सा आता है। और अंत में डिल्सी के खंड में पहुंचकर कुछ ठहराव, शायद एक तरह की भावनात्मक शुद्धि, कथार्सिस जिसे कहते हैं, वो महसूस होती है। पाठक के मन पर इसकी क्या छाप रह जाती है?
मुझे लगता है ये हमें मानवीय खुशी कितनी नाजुक हो सकती है ये दिखाता है। इतिहास और यादों का बोझ कितना भारी हो सकता है ये महसूस कराता है। ये हमें नुकसान, अतीत की पकड़ और जीवन में अर्थ खोजने जैसे मुश्किल सवालों से रूबरू कराता है। ये कोई आसान उपन्यास नहीं है, पर यह बेहद शक्तिशाली है।
निश्चित रूप से ये आधुनिकतावादी साहित्य की एक महान कृति है, जिसने न केवल अपने समय में बल्कि बाद की पीढ़ियों के लेखकों को भी गहराई से प्रभावित किया है। इसीलिए ये आज भी साहित्य के विद्यार्थियों और गंभीर पाठकों के लिए एक जरूरी पठन बना हुआ है।
अंत में अगर हम इस उपन्यास के स्थायी संदेश को एक या दो पंक्तियों में समेटना चाहें, तो शायद ये कह सकते हैं कि फॉकनर हमें दिखाते हैं कि बाहरी पतन और अराजकता के शोर के बीच भी मानवीय गरिमा, सहनशीलता और करुणा वो चुपचाप जीवित रह सकती है, जैसा कि डिल्सी के चरित्र में नजर आता है।
हाँ, और साथ ही ये याद दिलाता है कि अतीत कभी पूरी तरह बीतता नहीं, वो हमारी रगों में, हमारी चेतना में हमेशा दौड़ता रहता है, हमारी पहचान बनाता है और हमारे आज को लगातार आकार देता रहता है। यह संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।